था उस मुकाम के अंदर, तो ये भी मामलात यहाँ भी कुरान ने उन्हीं मामलात को बिलाखिर जो है वो एड्रेस किया है। और फिर जो खास तौर पर औरत के मामलात, फिर उसमें जो मर्द के हुकूक है उनका भी तज़किरा आया है, लेकिन ज्यादातर इनमें औरत के हुकूक के हवाले से जो तज़किरा है वो उनका यहाँ पे जिक्र आया है। और इंशाल्लाह ताला, और ये पिछले इस बात से ये सिलसिला जारी है, और हम इन्हीं का इंशाल्लाह ताला आज अल्फाज, उनके मुआनी और उनके अंदर जो चंद अहकाम पोशीदा हैं उनके पे इंशाल्लाह ताला और करेंगे अल्लाह ताला के फजल व करम से। आपको पता है सूरह निसा का जो है ये मुआशरे के मुतालिक जो मुआशरती अहकाम है, खास तौर पर शुरू के अंदर जो पहला हिस्सा है इसका मुआशरत के अहकाम है इसमें, और उम्मत मुसलमान की जब बिना डाली जा रही है तो उसमें फिर अहकाम शरीयत मुसलमानों को बताए गए, आयली खान हकूक हैं, खानदानी हकूक हैं, यतामा, विरासत, जिनसी बहरारवी है जिसके मामला आज भी जिनका जिक्र होगा, निकाह, हकूक निस्वा, ये सारे मामलात हैं। पहली 43 आयात हैं जिसमें बड़ी तफसील के साथ इसके साथ आप देख रहे हैं कि इससे पहले विरासत के मामले के अंदर जो तफसील आई है वो हैरान कुन है, और अब जो है रिश्तों के मामले के अंदर जो यही ऐसी ही तफसील आ रही है। तो इंशाल्लाह ताला आज इस पे मामलात पे जो है इन अल्फाज पे और इनके अंदर आने वाले काम पे गौर करेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला यहिल्लु लकुम, ला नहीं, यहिल्लु हलाल है, ये लफ्ज जो ला यहिल्लु हलाल होना, किसी चीज का जायज होना, अल्लाह ताला की तरफ से उसकी इजाजत होना, यही हुए ला यहिल्लु, तुम्हारे लिए नहीं है हलाल, लकुम तुम्हारे लिए नहीं है, अन तरसु के तरसु, वही लफ्ज है विरासत वाला, लेकिन ये जो अलिफ आप देख रहे हैं तरसु के बाद जो अलिफ आ रहा है इसकी कोई यहाँ पे इसका मकान या इसकी कोई जगह बनती नहीं है कि ये तरसु, मसलन अगर ये अलिफ को हटा दिए जाए तो ये फिर तरसु जो है पूरा एक लफ्ज बनता है, तो ये अलिफ डालने की क्या जरूरत है। तो ये जो है इसको भी आप जान लिया करें कि जहां पे भी ये अलिफ ये डाला जाता है उसके सीगों में, जमा के सीगों में आप देखो कि सेकंड पर्सन ये प्लूरल का सीगा है, तुम, यू प्लूरल का सीगा है, तो इसमें फिर आगे अलफ का मतलब जो इससे ये जाहिर करता है कि यहाँ पे एक लफ्ज था जो यहाँ से हजफ कर दिया गया है, जो हटा दिया गया है यहाँ पे कायदे की वजह से, किसी कायदे की वजह से, वो हम कायदे हम इस सबक इस हमारे हमारा जो कुरान का जो ये क्लास है हम सिर्फ तज़किरा कर देते हैं कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन उसको तफसील से पढ़ना आपके हमारे उसमें दायरे से जो या इसके स्कोप से बाहर है। तो तरसु आपको पता है कि जितने भी ये प्लूरल के सीगे होते हैं, जमा के सीगे हैं, उनमें आखिर पे नून आता है, नून नून जबरना, तो जाहिर ये तरसु ना था तो वो नून जो है यहाँ पे मिटा दिया गया है, तरसु असल तरसुना, और ये जो अन आया है पहले ये मस्तरी अन है, इसकी वजह से जो आखिरी नून है, और जो आखिरी नून होता है या जो अरबी में जितने भी जो जो वर्ब होते हैं उनका जो आखिरी लफ्ज होता है उसको एराबी कहते हैं, इस वजह से कि वो लफ्ज का एराब जो है वो तय करता है, तो इस वजह से वो उसको नून एराबी कहते हैं कि ये एराब वाला नून जिसके ऊपर जो बताता है कि ये जबर जेर पेश उस पर क्या होगा, वो नून जो है वो यहां से गए। तो अंतरसु जो है अंतरसु ना था कि तुम लोग वारिस बनो, निसा निसा मन औरतों, और करहा औरतों के वारिस बनो तुम, करहा जबरन जबरदस्ती के तौर पर, ये करहा यक रहो करहन बुरा समझना, नापसंद करना किसी चीज को, या फिर उस मजबूरन के मानी के अंदर भी आता है मजबूरन, फिर जबरदस्ती और जबर और इकराह के मानों के अंदर, इसी से लफ्ज इकराह है जो है ना करहन, ला इकराह फिर दीन, दीन के अंदर कोई जबर नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, जोर नहीं है, तो वही लफ्ज जो है यहाँ पे है जबरदस्ती के मानों के अंदर, औरतों के जबरदस्ती वारिस ना बनो, वला तादुलू हुन्ना, वला तादुलू, अच्छा ये लफ्ज वला और ना ता जबर, ये जो पहला ता है ये सेकंड पर्सन वाला है तुम, आगे है अदला लफ्ज है, और हुन्ना वो औरतें, उन औरतों से मुराद है अदला, ये जो लफ्ज है ये वही लफ्ज है अदला जो उर्दू में हम उजलात जो है आपको पता है उजलात पट्ठों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और पट्ठों ये पट्ठे इनको उजल इन मुसलमानों में कहते हैं कि ये बांध के रखते हैं, रो के रखते हैं गोश्त को हड्डी के साथ, इस वजह से इनको अजल या अजलात, अजल की जमा अजलात है, تو پٹھوں کو عضلات کہا جاتا ہے. تو روکنے کے معنوں میں پھر یہ عزل لفظ آیا ہے. اور ولا اور نہ تم ادلوہن ان کو روکو, ان عورتوں کو زبردستی روکو. روکنے سے مراد یہاں پہ زبردستی ہے, رکاوٹ ڈالنا جو ہے یہاں پہ ناجائز روکنے کے معنوں کے اندر بھی آیا ہے, تنگی کرنا منع کرنا یہ سارے اس کے معنوں میں آتے ہیں. لتذهبوا بعضا, لفظ لی جو ہے یہ کے لیے تاکہ کے لیے, تاکہ تذهبوا تا سیکنڈ پرسن والا ہے, ذهب جانا, تاکہ تم لے جاؤ, ببعض کچھ یعنی کچھ تم لے جاؤ, ما آتے تمو ہننا, ما جو آتا تم نے دیا, تمو ان کو ہننا ان عورتوں کو جو تم نے دیا ہے ان عورتوں کو, آتے تمو جو ہے یہ بھی اسی طرح جو ہے وہ آتے تمونا ان تم نے جو دیا ان عورتوں کو, ہننا ان آگے جو ہے ان عورتوں کی طرف ریفر کر رہا ہے. اور یہ جو لفظ ہے آتا ہے یہ آتا نہیں ہے, آتا ہے یہ فورتھ فارم ہے جو ہے ورب کی جو باب افعال ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دینا. اور اسی اگلے لفظ میں اللہ ان جاتینا یہ پہلی فارم بھی اس لفظ کی آ گئی ہے, سوائے اس کے کہ وہ لائیں یا جاتینا. دیکھیں آپ اس کو, یہ اوپر جو ہے باب افعال ہے فورتھ فارم ہے, اور یہ آتا جاتی اتیان جو ہوتا ہے یہ آنا یا لانا, کہ وہ لائیں عورتیں یعنی تم عورتوں کو اس وجہ سے نہ روکو کہ تم نے انہیں تاکہ تم ان سے کچھ لے لو جو ہم نے تم دیا ہے. اور دیے سے مراد کیا ہے کہ نکاح کے وقت جو تم نے ان کو مہر جو دیا ہے ظاہر سے مراد وہ ہے, سوائے اس کے. اب اس میں ایک ایکسیپشن بتائی گئی, ایکسیپشن یہ کہ لائیں یا تین ہے, سوائے اس کے کہ وہ لائیں یا وہ کریں بفاحشتن مبینہ. اب بفاحشہ, فاحشہ جو ہے وہ برا فعل, اور کوئی بھی بہت ہی ایسا فعل جس کی برائی بالکل ایویڈنٹ اور کلیئر اور ظاہر ہو, یہ فاحش کے کام ہو. جیسے اردو میں ایگزیکٹلی یہ لفظ ہوتا ہے فاحش, اور چونکہ یہ فیمینن ورڈ ہے تو آگے اس کی جو صفت ہے وہ بھی فیمینن ہے, مبینہ تن, تو واضح مبین بالکل واضح صاف ظاہر کھلی کوئی بے حیائی اس کا معنی پھر کیا گیا. وہ آشرو ہننا یعنی اگر تم اس صورت میں ان کو ہاں اس کو جو ہے روک سکتے ہو یا ان سے مال لے سکتے ہو کہ اگر وہ کسی کھلی بے حیائی میں جو ہے وہ مبتلا ہیں تو پھر یہ ایکسپشن ہے ان سے روکنے کی مال لینے کی. وہ آشرو ہننا, وہ آشرو ہننا اور ان کے ساتھ رہو. اچھا یہ جو لفظ ہے یہ اشرا عین شین را اشرا جو لفظ ہوتا ہے جو ہے وہ دس جس کے معنی ہوتے ہیں اشرا, اسی یہ بھی دس بھی اسی سے ہوتے ہیں لیکن یہ باب مفعال ہے. آشرا تیسری فارم جو ہوتی ہے آشرا یعنی مل جل کر رہنا زندگی گزارنا مل جل کر, تو آشرا یو آشر معاشرتن یہ جو لفظ معاشرہ ہے یہ ایز اٹ از اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پہ انسان مل جل کر رہتے ہیں معاشرہ کہلاتا ہے. اور اسی سے پھر بہت سارے اور بھی جو ہے وہ لفظ نکلے آپ کو پتا ہے کہ اسی سے پھر عشر بھی ہے, اسی سے معاشر بھی ہے جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں گے, اسی سے معاشر گروہ کے معنوں میں آتا ہے یا معاشر الجن والے, اسی سے پھر اشار بھی ہے لفظ جو ہے وائز الشار ہوتے جو دس مہینے کی حملہ اونٹنی جو ہے جو اپنا بچہ جو ہے چھوڑ دے گی یہ سب, اسی سے پھر اشیرہ بھی ہے وہ رشتہ دار ظاہر جو قریب مل جل کے رہنے والے اشیرے, تو یہ وہی ہے آشر میں مل کر رہنا بالمعروف معروف طریقے سے. یعنی معروف طریقے سے مراد کیا ہے جو بھی رواج اور بھلے طریقہ ہے جو اسے رسم و رواج اور معروف سے ہٹ کر نہیں ہے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَاپَسْ اِن اگر كَرِهْتُمُو اگر تم کرہت کرتے ہو ان سے اگر تم پسند نہیں کرتے ان کو, فَآسَا فَاپَسْ اَسَا جو ہے یہ لفظ جو ہے امید کے لیے ہو سکتا ہے اس میں کافی امکان ہے اس بات کا یعنی یہ توقع اور امید اور ممکن ہے ان معنوں کے اندر آتا ہے. اور محبوب چیز اگر کوئی ہو تو پھر امید غالب کے لیے آتا ہے یعنی اگر کسی کوئی چیز پسندیدہ پلس پوائنٹ اگر ہے تو پھر امید غالب کے لیے, اگر مکروہ کسی چیز میں پھر یہاں کے اس کا استعمال ہے ایسا کا تو پھر اس کے لیے اس چیز میں خوف جو ہے پوشیدہ ہوتا ہے کہ یعنی جو ہے اگر اللہ تعالیٰ عذاب کے جو ہے وہ عصا کے ساتھ عذاب کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ عذاب دیا جائے, اور جب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہیں معاف کرنے والا ہے تو پھر اس میں غالب امکان ہوتا ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا. تو یہاں پہ پھر جو ہے یہ اگر تمہیں فرمایا کہ اگر تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں غالب امکان ہے، کبھی امکان ہے کہ ان تکرہو شیئا، ان کے تکرہو تم کراہت کرو کسی چیز کو، ناپسند کرو کسی کو شے کو، وہ جج اللہ اور اللہ تعالیٰ بنا دے، اس میں رکھ دے، فی ہے اس کے اندر خیرن کثیرہ، بہت ساری، بہت سارا خیر، بہت ساری بھلائی برکت اس میں اللہ تعالیٰ رکھ دے. تو یعنی یہاں پہ اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی چیز کو پسند نہیں کرتے پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر ہو. اس آیت کا ترجمہ جو ہے پڑھ دیجیے.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. ہاں اگر وہ کسی صریح بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقہ سے زندگی بسر کرو. اگر وہ تمہیں نا پسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو.
جزاک اللہ. اب دیکھیں کہ یہاں پہ اس آیت کے اندر عرب جاہلیت کے معاشرے کے اندر ایک بڑی مکروہ رسم وہاں پہ رائج تھی، اور قرآن نے اور اسلام جب آیا ہے تو اس مکروہ رسم کی اور اس کی قباحت اور شناعت اتنی بہت واضح تھی کہ بالکل ابتدائی دور کے اندر ہی اس جو رسم کی جو ہے وہ اصلاح کی گئی ہے. اور وہ رسم جو ہے اس سے پہلے ہم پڑھ بھی آئے ہیں، پڑھا بھی تھا کئی جگہوں پہ آئے، اس کا تذکرہ آیا ہے اور یہاں پہ خصوصی طور پر اس کا ہے کہ قبل اسلام معاشرے کے اندر جو ہے ایسا ہوتا تھا کہ ایک عورت کی، ایک شخص کی بہت ساری بیویاں ہیں، تو جب وہ شخص مر جاتا تھا تو اس کے جو بیٹے ہوتے تھے اپنی ماں کو چھوڑ کر جو ان کی حقیقی ماں ہے، اب اس کی دوسری بیویوں کو جو ہے وہ روک لے لیتے تھے اور بعض اوقات ان سے جو ہے وہ شادی کر لیتے تھے، نکاح کر لیتے تھے. تو یہ جو ہے، اور یعنی عورت گویا بالکل جو ہے، یا پھر اس کو تقسیم کر لیتے تھے کہ یہ اس بیٹے کے حصے میں آ گئی ہے اور یہ اس بیٹے کے حصے میں آ گئی ہے، اور پھر اس کو روک لیا اور اس کو جو ہے اس کے وارث بن گئے، اور اس کو جو ہے باہر اس کی زندگی بالکل ختم ہو گئی ہے، اس کو باہر کی نکاح کی اجازت نہیں ہے، باہر کسی طرح جو ہے انڈیپینڈنٹ لائف اس کو اجازت نہیں تھی. اور یہ ظلم جو ہے وہ صرف عرب معاشرے تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ ارد گرد کی جو بھی تمدن تھے، یونانی تمدن تھا، رومی تمدن تھا، ان کے اندر بھی یہی دستور تھا. اب جیسے جو ہے میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ جو ہے وہ جو کبھی فیل تھا، اس نکاح کو جو کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا تو اس کو نکاح مکت کہتے تھے، اور پھر انہیں ہونے والی اولاد کو مکیت کہتے تھے. اور اس معاشرے کے اندر بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن بہرحال یہ ہوتا تھا، وہاں پہ موجود تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بہت ساری سی مثالیں موجود تھیں، لوگ موجود تھے جو اس طرح کی اولاد جو ہے یعنی اس اولاد سے تھے جہاں پہ لوگوں نے اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیے تھے. اور قرآن نے وہاں پہ اس کا ایک دوسری جگہ پہ آخری پارے میں اس نے اس کے شخص کا ذکر بھی کیا ہے، ولید بن عتبہ کا. اس زمن میں جو ظلم اور بے اعتدالیاں وہاں پہ اس زمان میں رائی تھی، اس میں وہ یہ تھی کہ عورت کا میراث میں شرعی حق نہیں دیتے تھے، یا اگر جو ہوتا تھا وہ خود جو ہے لے لیتے تھے، عورت کو محروم کر دیتے تھے، اور اس کو صرف اس لیے نکاح کرنے نہیں دیتے تھے دوسری جو ہے کسی اور جگہ، کہ اس کا مال جو ہے عورت کا وہ ہڑپ کر لے، وہ مال جو ہے اپنے ساتھ نہ لے جائے. اور بالکل اسی طرح کی کبھی رسم جو ہے، اب آپ کو پتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر بھی مسلمانوں میں اندر رائج ہے کہ جو ہے وہ عورت کی شادی نہیں کرنی، کہ جو ہے کہیں پہ یہ جو جائیداد ہے اس کی تقسیم کی جو ہے وہ ذریعہ نہ بن جائے، یا پھر عورت کو بٹھائے رکھتے ہیں، یا پھر کہا جاتا ہے کہ یہ عورت نے قرآن سے اس کی شادی کر دی گئی، اب کوئی اور اس شخص سے شادی نہیں کر سکتا. یہ بالکل کبھی رسمیں ہیں اور یہ جاہلیت کے زمانے سے اس کا یہ تسلسل ہے، اور یہ بالکل اسلام کے اندر قابل قبول نہیں. پھر ان کو گھروں میں مجبور کیا جاتا، رکھ دیا جاتا، گھروں میں بند کر دیا جاتا، یہاں تک کہ موت آ جاتی اور پھر وارث اس کے مال پہ قبضہ کر لیتے. تو یہ وہ جو ہے وہ چیزیں تھیں جو رائج تھیں، اور اسلام نے ان کا بالکل کلا کما کیا ہے. تو دوسری بات یہاں پہ جو فرمائی گئی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بیوی کو پسند نہیں کرتا کسی وجہ سے، تو جو ہے وہ اس کو پھر پریشان کرتا ہے، اور پھر حقوق زوجیت وہ ادا نہیں کرتا ہے، اور نہ اس کو طلاق دے کر الگ کرتا ہے، اور بہانے بہانے سے اسے اذیت جو ہے وہ بعض اوقات رویے سے، بعض اوقات الفاظ سے، اور جو ہے اس کو تنگ کرتا ہے، اور تو پھر جو ہے وہ کہا گیا ہے بھائی اس کو مطلب مقصد یہ ہے تنگ کرنے کا کہ ये औरत जो है वो खुद ही जो है वो खुला का या तलाक का जो है वो कर ले, और जो भी उसको माल दिया गया है, जो भी उसका जो है हक मेहर है, तो वो जो उसको माफ कर दे। और ये इसकी जो है बड़ी सख्त जो है वो की गई है। तो ये इस बात की यहाँ पे कुरान में इसका तस्करा है। और बाज़ों का ये भी होता है कि शोहर तलाक भी दे देता है और फिर भी अपनी मुतल्लिका को किसी दूसरे की निकाह भी नहीं करने देता, कहा कि फलाने अगर निकाह किया। और ये बहुत जो है इसको बिल्कुल गैर जरूरी तौर पर और गैर शरी तौर पर इसको अपनी जो है वो कहा जाता है इज्जत के साथ और नमूज के साथ इसको जो है रिलेट कर दिया जाता है, हालांकि इसका कोई तल्लुक, जब आपने किसी औरत को तलाक दे दी है तो फिर उसके बाद कोई तल्लुक नहीं है, और वो औरत बिल्कुल शरी तौर पे आजाद है, तो जहाँ पे चाहे जो है वो उसका अपना निकाह कर सकती है। अच्छा, ये सारे मजालिम और ये इस्तेसाल और एक्सप्लॉयटेशन औरत की इस वजह से थी कि औरत को एक जिन्स का माल और माल जो है वो कमोडिटी के तौर पे जो समझा जाता था कि जब बंदा मर गया तो फिर उसकी औरत वो भी उस माल की तरह जो है शामिल है, जैसे दूसरा उसका माल तकसीम होगा तो ये माल भी जो है ये औरत भी उस तकसीम के अंदर शामिल हो जाएगी। अब कुरान करीम ने इन मजालिम और इन मजालिम से जुड़े तमाम तस्वुरात को जड़ से उखाड़ फेंका और बिल्कुल एक नए तमद्दुन और तहजीब और नए कवानीन की बुनियाद रखी जिससे दुनिया से पहले आशना नहीं थी, और औरत के बारे में एक नया तस्वुर दिया, और औरत के बारे में ये नया तस्वुर इज्जत के ऊपर मबनी है और शर्फ पे और आबरू उसकी और उसकी तौकीर और उसके एहतराम और उसके वकार पे मबनी है ये। और ये इस वजह से हमें बहुत जानने की जरूरत है कि देखो कुरान ने और अल्लाह ताला ने क्या मकाम दिया औरत को। लिहाजा अगर औरतें जो है या जो है जहाँ पे जिस मुआशरे में औरत के हकूक की बात की जाएगी तो उनको चाहिए कि वो इस्लाम के हकूक की बात करें, इस्लाम को नाफिज करने की बात करें, बजाय इसके कि इस्लाम से दूर भागकर जो है किसी और दूसरे लोगों के हत्थे में जो वाकई औरत का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके हत्थे फिर चढ़ जाएं और उनके नारे जो है वो अपना लें औरतें। अब इन मजमूम रसूम और रिवाज के खात्मे की अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाए हैं, अहकाम इरशाद फरमाए हैं, उनमें जो है वो कुछ एक ये हैं कि शोहर के मरने के बाद खानदान वाले बेवा की को मैयत की मीरास समझ कर उसके वारिस न बन बैठे। औरत अगर मर गया है तो बिल्कुल शोहर यानी अगर मर गया है तो औरत फिर आजाद है और वो जहां चाहे फिर जो है वो इज्जत के बाद शादी कर ले, उसको जो है वो निकाह को रोका नहीं जाएगा। और अगर कोई जबरदस्ती उससे निकाह करता है या जबरदस्ती उसको निकाह किसी और निकाह पे मजबूर किया जाता है तो वो इस्लाम ने उस जबरदस्ती के और जबर के निकाह को कलदम करार दे दिया कि ये नहीं होगा, ये कायम ही नहीं होगा, बल्कि ये जबरदस्ती का निकाह है जो उस पर ठोसा गया है, उसकी कोई हैसियत नहीं है कानूनी और शरी। अगर किसी शख्स को अपनी बीवी नापसंद हो तो फिर इस बात की हर की इजाजत नहीं है कि कुछ जो कुछ उसने दिया है बीवी को फिर उसे जो है वो सारा के सारा उगलवा ले वापस। और एक हदीस मुबारक के अंदर इसको बिल्कुल खाए हुए को उगलने की और उगले हुए को खाने की जो है तरफ जो है इसकी तशबीह दी गई है और इसको बिल्कुल सख्त नापसंद किया गया है। अगर वो उसे छोड़ना चाहता है तो भी फिर फरमाया गया है कि उसे शरीफाना तरीके से बिल्कुल मारूफ तरीके से छोड़ दे, और शोहर की हैसियत से उसको ये हक नहीं पहुंचता कि जो भी उसने बीवी को अपने शोहर होने की हैसियत से तहफ दिए और जो भी उसने उसको मेहर दिया और प्रेजेंट गिफ्ट जो भी दिया है उसे वापस लेने की उसको जो है सख्त ममानत की गई। और साथ ये भी फरमाया कि अगर औरत खूबसूरत नहीं है और उसमें कोई ऐसा नक्स है जिसको शोहर को जो जो जिसको नापसंद करता है तो फिर ये मुनासिब नहीं है कि फौरी तौर पर दिल बर्दाश्त होकर जो है फैसला कर दे छोड़ने का। फरमाया कि हत्तुल इम्कान हद तक सब्र और तहम्मुल से काम ले। बाज़ों का कोई एक चीज इंसान को पसंद नहीं होती लेकिन औरत के अंदर बहुत सी दूसरी ऐसी चीजें होती हैं, खवास हो सकते हैं, खसूसियात हो सकती हैं जो जो है वो अस्तवाजी जिंदगी के लिए खूबसूरत बनाने के लिए बहुत काम आती हैं और उनकी बहुत अहमियत है। हो सकता है उस औरत के अंदर दूसरी खूबियों को एक्सप्लोर करें और तलाश करें और उनको अप्रिशिएट करें। यहाँ पे एक सही मोमिनाना रवैये की निशानदेही की गई है कि अगर किसी तरह उसको किसी आजमाइश में इन ये पेश आ जाए और कोई इंसान का जौक की मुनासबत के अतबार से जो है वो उसको बीवी पसंद नहीं है तो फिर फरमाया गया कि अपनी शराफत और मतानत के लिहाज से उसके साथ अच्छा जो है बर्ताव करे और अल्लाह ताला से खैर और बरकत की उम्मीद रखे। इस बात को असा के साथ बयान किया गया है, यानी असा का मतलब है कि इजहार उम्मीद और इजहार तवक्को तो है लेकिन ये अगर कुरानी इसलूब को हम देखें तो ये एक मुजमर वादा है कि इसके अंदर बहुत खैर और बरकत होगी। यानी अगर तुम अपनी जो है बीवी की किसी नामाकूल बात को या कोई ऐसी बात जिसको तुम नापसंद करते हो उस पे अगर खैर और सब्र, उस पे अगर सब्र करो और बर्दाश्त का मामला करो तो अल्लाह ताला यकीनी तौर पर तुम्हारे अंदर तुम्हारे लिए इसमें से खैर बरामद फरमाएगा। इन्हीं उलमा ने इस असा के लफ्ज को बड़ा हाईलाइट किया है कि इस असा के अंदर कुरानी सलूक के लिहाज से एक पूरा अल्लाह ताला का वादा मुजमर है। फरमाया अरदतुम, अगर तुम अरादा करो, ये अरादा वही है, अरदतुम तुम अरादा करो, मुस्तबदाला इस्तबदाल का, बदलने का, जौजन बीवी के बदलने का, यानी इस्तबदाल जो है ये बदलना होता है कुरान में, कानून इस्तबदाल है, कौमों के बदलने का कानून अल्लाह ताला ने बार बार इरशाद फरमाया है। मकान जौजन, किसी बीवी की जगह, मकान जगह, जौज बीवी भी, यानी किसी एक बीवी के बदलने का किसी दूसरी बीवी के साथ बदलने का तुमने अगर जो है वो इरादा किया है, वो आता है तुम और तुमने उनको दिया है, ए दाहुन्ना उनमें से, उन औरतों में से किसी को तुमने दिया है, किन तारन बहुत ढेर समाज, ये असल में एक यूनिट है किस मैयर का, बहुत बड़ा इसमें इसकी जो है मकदार मुख्तलिफ होती रहती है, लेकिन आमतौर पर इससे मुराद जो है ना एक ही लफ्ज दिया जाता है कि ढेरों माल, बहुत सारा खजाना और बहुत सा माल जो है, यानी जिसे उर्दू में हम ढेरों माल कहते हैं, उससे मुराद जो होगा अगर तुमने किसी को दिया और ढेरों माल, फला ताखुजू, फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फला पस ला नहीं, ताखुजू तुम लो, पस वापस ना लो तुम, मीनू शैया उसमें से कुछ भी, अगर तुम दे चुके हो तो फिर दे चुके उसको, फिर तुम्हें वापस लेने का हक नहीं है। अता खुजू न हो क्या, आ जो है ये लफ्ज आ जो है हरफे इस्तफहाम है, इंटरोगेटिव है, ताखुजू न हो तुम लेते हो, उसको उस माल को तुम लेते हो, बहुत आनंद झूठे इल्जाम लगाते हुए, इस्म मुबीना और खुला गुनाह होते हुए, इन ये वो रस्म थी कि जो है वो अब औरत को जो है वो तलाक देनी है तो उस पर कोई झूठा इल्जाम लगा दिया, और झूठा इल्जाम लगा के फिर औरत जो है उसे जो है वो उसको जो माल जो उसको दिया है वो भी उसे ले लिया, और उसे जो जो उसका मेहर है वो भी उसको ना दिया, उसे वापस ले दिया, तो ये वो चीजें हैं इसकी तरफ इशारा किया गया, और वो इशारा नहीं बल्कि बिल्कुल वाज तौर बताया गया कि ऐसा ना करो। वह कैफा ताखुजून हुआ, कैफा और कैसे, हाउ ताखुजून, तुम लेते हो उसको उस माल को, वक़द अफदा, और हालांकि तुम पहुंच चुके हो, जब ये जो लफ्ज है फदा, ये वही लफ्ज है फिजा जो आसमान और जमीन के दरम्यान में खाली जगह होती है, तुम किसी जगह पे पहुंच चुके हो, यानी से इसका अफदा युफदी इफदान का मिलना इतिसाल भी होता है, मिलना भी होता है बाब फाल में, तो यानी तुम मिल चुके हो, ये मियाँ बीवी के मिलने की तरफ इशारा है, यानी वो फरमाया गया इसमें वो जो मुफसरों ने कहा कि ये अफजा या तो फिर जोजैन के इत्तेहादो जगानत की तरफ जो है किनाया है कि यानी वो दोनों उनके दरमियान जो इत्तेहादो जगानत थी तुम उसको एंजॉय कर चुके हो, तुम आपस में तुम्हारे बड़े अच्छे करीबी तल्लुकात इंटीमेट रिलेशन थे तुम उसको कर, और या फिर मुबाशरत से वो भी इंटीमेट रिलेशनशिप की तरफ जो है इशारा है, हालांकि तुम यानी एक दूसरे में जो है एक दूसरे से जो है वो इतने अच्छे इत्तेहादो जगानत और तुम्हारे दरमियान इंटीमेट रिलेशनशिप रह चुके हैं, तो इससे जो है एक इशारा जैसे मैंने कहा कि किनायतन लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, और मुफसरीन ने लिखा है कि ये भी जितने भी जिनसी मसाइल हैं उनको बयान करने के सिलसिले में कुरान में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, आखिर में इस पे एक जो है वो स्लाइड्स भी शामिल, दो एक दो स्लाइड भी है, तो उसमें बिल्कुल सराहत गोई नहीं है, बिल्कुल क्लियरली कैटेगोरिकली वाज लफ्ज नहीं बयान किया गया है, बल्कि उनको किनायतन इशारतन बयान किया गया है, और इससे फिर ये एक बड़ा अच्छा और पसंदीदा जो है ये तरीका है, और ये कुरानी तरीका है, और ये अल्लाह ताला का तरीका है, और इसमें शर्म हजा की जो अहमियत है वो इससे जो है वो वाजह होती है, लेकिन इसको 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 जो है वो जान लेना चाहिए कि जो फुकहा ने बहुत ही तफसीलात और जिन्हें कहा जाता है कि वो ग्राफिक डिटेल्स जो है वो बयान किए हैं, जिनका कुछ हदीस के अंदर भी जिक्र है, वो उस सूरत में है जब अदालत के अंदर जो है ये इन चीजों का फैसला करना होता है, इन मामलात का, और जिनकी बुनियाद पे कैपिटल पनिशमेंट्स होती है, तो फिर वहां पे जाहिर काजी के सामने फिर किसी किस्म की शर्म हया और झिझक वहां पे माने नहीं होनी चाहिए, वहां पे वो बड़ी खास है, लेकिन आमतौर पर जब मुआशरे के अंदर, तालीमात के अंदर, दुरूस के अंदर जब इन चीजों का तस्करा हो जब, तो फिर इनको इशारतन किनायतन ही बयान किया जाना चाहिए। बादुकुम इलाबादिन, हालांकि तुम बादुकुम तुम में से एक दूसरे तक, इलाबाद यानी तुम लोग पहुंच चुके हो तुम में से एक दूसरे तक, यानी और वही बात है जो भी मैंने बताई है। वाखज़ना मिनकुम, और तुम लिया तुमसे, औरतों ने या तुमके उनके वलियों ने जो लिया है तुमसे, मीसाकन गलीजा, जो एक पुख्ता वादा, सब मीसाक वादे को गलीज थिक बड़ा जो है वो जो पुख्ता के मानों के अंदर आता है। फिर मीसाक से गलीज से मुराद अकद निकाह, और अकद निकाह के अंदर वो कौलो करार हैं जो मर्द औरत के महर और नफका को की पूरी जिम्मेदारी लेता है, या फिर कोई इसी तरह का कोई और भी अहद और कौलो करार अगर निकाह के अकद में जो शामिल किया गया है निकाह के अकद में, तो फिर उसके अंदर वो भी इसे मीसा की गलीज है, क्योंकि उसकी हैसियत कानूनी है और वो अल्लाह ताला को के सामने उनके और गवाहों की मौजूदगी में उसका इकरार किया जाता है, इसलिए इसको मीसा की गलीज करार दिया गया है। इन दो आयात का तर्जमा पढ़ते हैं।
और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी ले आने का इरादा ही कर लो, तो ख्वाह तुमने उसे ढेर सा माल ही क्यों न दिया हो, उसमें से कुछ वापस ना लेना, क्या तुम उसे बहुतान लगाकर और सरी जुल्म करके वापस लोगे? और आखिर तुम उसे किस तरह ले लोगे जबकि तुम एक दूसरे से लुत्फानंदोज हो चुके हो और तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी हैं और वो तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी हैं।
अब अलहदगी अगर की सूरत के अंदर, और अलहदगी नागुजीर होने की सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने हिदायत इरशाद फरमाई, जाहिर है ये भी इसका अलहदगी का एक जो है वो रास्ता अल्लाह ताला ने रखा है कुरान इसमें इस्लाम के अंदर। इस सबका आयात के अंदर भी ये बात फरमाई गई कि अगर इन हिदायत के बावजूद कि तुम सब्र करो और बर्दाश्त करो और अल्लाह ताला उसमें खैर और बरकत जो उसके अंदर डालेगा, अगर ये हिदायत दी गई है, तरगीब दी गई है, लेकिन इन तरगीबात के बावजूद अगर निभा मुमकिन नहीं, और ये ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, ऐसा जो है इंसानी तबीयतों के अंदर ऐसा होता है कि वो बिल्कुल निभा नहीं कर पाती, तो फिर फरमाया कि जो अगर तुम इस नतीजे पे पहुंचे हो कि एक बीवी को छोड़कर दूसरी बीवी से शादी जो है तुम करोगे, तो फिर ये अहकाम है जो इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम फिर ये करो। अलहदगी के फैसले की सूरत में इस काम को खुश असलूबी के साथ और वकार के साथ और मकानत के साथ अंजाम दो, और तुमने अपनी बीवी को हकमहर की सूरत में जो भी तहायफ दिए हैं और जो उसकी मिल्कियत बन गए, आप जाहिर है उसकी मिकदार चाहे खजानों के अंदर ही है, यानी तुमने बेइंतहा माल उसको दिया है उसमें से, तो फिर ये तुम्हारे लिए नहीं बनता कि तुम उसमें से उसको वापस लो, और ना बोहतान लगाकर बीवी को मजबूर करो कि वो लिया हुआ हकमहर वापस करे, यानी कि ऐसा हीला करो, बहाना करो, ऐसा बनाओ जिससे वो मजबूर हो जाए कि वो औरत जो है हकमहर वापस कर दे। इस तरीके से बिलवास्ता और बिला वास्ता दोनों तरीकों से या कोई हीलों के जरिए से मेहर वापस लेने की अल्लाह ताला ने ममानत कर दिया कि तुम ऐसा कोई काम ना करो। फरमाया कि जिस औरत के साथ जिंदगी भर का पैमाने वफा था तुम्हारा, और जो नहायत मजबूत मिसाल के साथ यानी अकद के तहत वजूद में आया, अकद बड़ा एक मुबारक रिश्ता है और बड़ा अल्लाह ताला के हुजूर इसको अल्लाह ताला के सामने गवाह, अल्लाह ताला को गवाह बनाकर और गवाहों की मौजूदगी में जिसका इकरार किया जाता है, फरमाया कि वो औरत फिर उसके इस रिश्ते के तहत, इस अहकद और मीसा के तहत, फिर जिसने अपना सब कुछ अपना जो है तुम्हारे सामने बेनकाब अपने आप को कर दिया, और तुम एक मुद्दत तक बिल्कुल यकजान और दो कालिब होकर तुमने जिंदगी गुजारी है, अगर कभी जिंदगी में उससे जुदाई की नौबत आ जाए तो फिर क्या अपना जो तुमने खिलाया पिलाया और फिर उसको सब चीजों को तहाइफ को उनको वापस लेने का मुतालबा इंतहाई गैर अखलाकी है और अखलाकी लिहाज से नापसंदीदा और माजूब है। और ये जान लो कि ये जो इस्तवाजी अहदो पैमान था और तुमने एक दूसरे से तमतो किया है, उसके मुकाबले में ये माल औरत का हक था, तो गोया तुम इस हक को जो है वो ये औरत का हक है उसको उसके लिए छोड़ दो और वापस ना लो। तो फिर इस आयत मुबारक के अंदर जो चंद एक जो है अहकाम बयान किए गए उसमें उनका खुलासा ये है कि मर्द अपनी बीवी को तलाक देकर अपनी दूसरी बीवी का इंतखाब कर सकता है, ये अल्लाह ताला ने हक दिया है और मर्द को, यानी ये तलाक जो है मर्दों के इख्तियार में उसका हक है, इस हक का अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस आयत के अंदर जो है वो इरशाद फरमाया, उसके बारे में जिक्र किया है। मेहर की मुकदार का गैर महदूद होना जो है बयान फरमाया, ये गैर शरी नहीं है, जाहिर किंतार के लफ्ज में ये चीज पोशीदा है कि ढेरों माल अगर तुमने खजानों की मानत भी माल दिया है तो फिर जाहिर ये इसकी तरफ इशारा है। फिर जाती मिल्कियत की हदूद के वसी होना भी इसे जो है वो साफ जाहिर है कि अगर कोई शख्स जो है बहुत अरबों और खरबों का मालिक है, तो उस पे खामखा बिल्कुल जो है, इसलिए कि बहुत सारे लोग मालों को जो बनाते हैं और जो है गैर नाजायज जराए से और इस्तेसाल के जरिए से बनाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि तमाम इसका इतलाक तमाम लोगों के ऊपर है। अगर किसी ने जायज जरिए से माल को जो है कमाया है और उसका कारोबार जो है वो फैला है, तो इसकी भी इसमें कोई शरीय तौर लिहाज से इसमें कोई कदखन नहीं है। मर्द का अपनी बीवी को नापसंद ना करना और दूसरी शादी का रुझान रखना इस बात को जायज करार नहीं देता कि मर्द तलाक के बाद पूरा महर जो उसके कुछ हिस्से वापस ले, कोई भी हिस्सा लेना थोड़ा जब बहुत जो है ये उसके लिए जायज नहीं है। इस बात को बताया गया शोहरों का महर वापस लेना एक गलत काम और एक वाज गुनाह है, ये वाज तौर पर बता दिया गया। मर्द और औरत दोनों के हकूक को यहाँ पे तहफुज किया गया है, मर्द के अख्तियारात की वजाहत की गई है और औरत के वसीतर हकूक की सराहत की गई है, क्लियर कट वाज तौर पर बताया गया है। तो ये वो अहकाम है जो इस आयत मुबारक के अंदर जो है बयान किए गए। मैं तन वला तन की हूँ और ना तुम निकाह करो, वला और ना तन क्यू ता जो है वो सेकंड पर्सन वाला है, न कि हूँ निकाह करो और ना तुम निकाह करो उससे, यानी किसी से निकाह करने की बात है ना, माँ न कहा आबाओ को, माँ न कहा जो जिनसे निकाह किया आबाउकुम तुम्हारे आबा ने, आबाओ अजदाद जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, बाप दादा यानी आबा तुम्हारे बापों ने, यानी यहाँ कहेंगे लेकिन बापों से मुराद फिर जाहिर है बाप और जो है वो दादा भी शामिल है, मिने निसाए और तुम इसे इल्ला मा कद सलफ, इल्ला सिवाय इसके मा जो कद यकीनी तौर पर सलफ हो चुका पहले, यानी जो कुछ पहले गुजर चुका सो गुजर चुका, इन्नहु काना यकीनन ये है फाहिशतन बहुत फहश खुली बेहयाई बुराई है ये, व मक्तन और वही लफ्ज फिर आ गया है जो अभी ये हुआ था, सख्त नापसंदीदा फेल जो है मक्तम को, तो मक्तन बेजार होना किसी शख्स के बुराई का मतलब उसे बुगज रखना, ये सख्त बुरा फेल होना, और मकर फिर जो है मकबूज और नफरत अंगेज फेल के लिए किसी शय के लिए इस्तेमाल होता है। वह सा असबीला, सा सू जो है ये बुरा बुरी चीज इंतहाई बुरी चीज, सबीला रास्ता और इंतहाई बुरा रास्ता है ये, कोई अगर शख्स रास्ते पे चले तो
और से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों उनसे हरगिज निकाह ना करो, मगर जो पहले हो चुका सो हो चुका, दर हकीकत ये एक बेहयाई का फेल है, नापसंदीदा है और बुरा चलन है।
अब ये एक और कबीर रस्म थी और मजमूम रस्म जो वहां पे जो रवाज था जिसके उसका खात्मा किया गया है, जैसे एजाम जाहिलियत में सोतीली माओ को निकाय मकत करके बगैर निकाह के, यानी या फिर बगैर निकाह के भी होता था ऐसे, कि घर में डाल दिया जाता था, तो कुरान ने इस मकाम के ऊपर इस बेहुदा फेल की सख्ती से ममानत की है और साफ साफ हुक्म दिया गया कि जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हूँ, जो तुम्हारी सोतीली माएँ हूँ, उनसे हरगिज निकाह ना करो, ये सिर्फ बुराई नहीं है बल्कि बेहयाई भी है और काबिल नफरत चीज है और बहुत ही बुरा रास्ता है। इस्लाम ने इसको हदीस मुबारक में आया गया है, कई हदीस की कुदरत के अंदर इस हदीस को कहा गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसको फरमाया कि उस शख्स को फिर जो है वो कत्ल कर दो अगर ऐसा कोई करे, और उसकी जायदाद के ऊपर, उस शख्स की जायदाद के ऊपर भाग के सरकार यानी जो रियासत के या जो वो होगी उसके जो है हिस्से के उसके हक में वो कब्जे कर लिया जाएगा, यानी इसको काबिले दस्त अंदाजी पुलिस जुर्म जो है वो ठहरा, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है ये इस्लाम के अंदर, और जो है इसको कतई तौर पर इसकी ममानत की गई है। तो मदनी और माशर्ती मसाइल में ये जाहिलियत के जितने भी रसूम थी पुरानी, जब उनको मिटाया गया तो कुरान में बिलमूम उसके बाद में एक बात फरमाई गई है कि फरमाया कि इल्ला मा का सलब, जो हो चुका सो हो चुका। अब जो हो चुका सो हो चुका का क्या मतलब है, इसके अंदर जो दो इसके जो मानी मुतय्यन हो किए जा सकते दो लिहाज से, एक ये है कि अब बेइल्मी और नादानी में और जाहिलियत के जमाने के अंदर और जाहिलियत के जमाने के रसूम रिवाज के तहत अब जो कुछ भी तुमने वो काम किए हैं जिनकी अब ममानत कर दी गई इस्लाम के अंदर, तो मैं कि उन पे गिरफ्त नहीं होगी, अगर हुक्म आ जाने के बाद तुम अपने तर्ज अमल की सलाह कर लो, तौबा कर लो और इस काम को छोड़ दो, तो फिर अल्लाह ताला उससे जो है माफ फरमाएगा, फिर उस पे गिरफ्त नहीं होगी। और दूसरी बात यह कि साबिक जमाने में अगर जो भी काम हराम ठहराए गए थे मतलब जो जो भी जो जो जिन कामों को अब हराम ठहराया गया, यानी वो साबिक जमाने में तो रस्म व रिवाज के तौर पे होते थे, अब उनको हराम ठहरा दिया गया। तो इससे ये नतीजे निकालना सही नहीं है कि पुराने कानून जो 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 रस्म व रिवाज था उसके मुताबिक जो हो चुके हैं आप उनके नतायज को कालाअज़म करार दे दिया गया है। उसके नतायज के मसलन अगर कोई ऐसा निकाह हुआ है तो उस निकाह के नतीजे के अंदर कोई औलाद पैदा हो गई है तो अब उस औलाद को विरासत से महरूम नहीं किया जाएगा, इसलिए कि ये एक ऐसे काम के नतीजे में जो है ये औलाद पैदा हुई है जिसको अब जो 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 कालाअज़म और हराम करार दे दिया गया है। तो फरमाया गया कि अब जो वो काम हो चुके सो हो चुके, उसके बाद वो काम नहीं होंगे, और उन कामों के नतीजे के बाद के अंदर अगर कोई उनके नतायज हैं तो उसकी फिर जो है वो जिम्मेदारियां उनकी जो जिम्मेदारियों को साकित नहीं किया जाएगा, उनके हकूक को साकित नहीं किया जाएगा। ये दो बातें जो इंशा फरमाई गई। और फिर उसके बाद फिर हराम रिश्तों जो है, हराम रिश्तों की बड़ी तफसील आई इस आयत के अंदर, और ये आज हमारी जो है आखिरी आयत है, हुर्रिमत अलैकुम, हराम की गई है तुम पर, उम्महातुकुम, उम्महात जो है तुम्हारी माएं, वह बनात को तुम्हारी बेटियां। अब ये उम्महात उनकी जमा है और बनात जो है बिंत की जमा है, बेटी, ये अल्फाज मारूफ है सारे। इसकी थोड़ी सी हम इसके मानी को देख लेते हैं, फिर तशरी जो है इसके बाद जो है उस आयत के बाद कर लेंगे। वह अख्वातुकुम और तुम्हारी जो है वो बहने, वह अम्मातुकुम तुम्हारी फूफियां, अख्वात की जो है उख्त की जमा है, और अम्मात जो है वो अमियातुन की जमा है, फूफी, जिसके लिए अम जो है वो चचा को कहते हैं और अम्मिया जो है वो फूफी को कहते हैं। वह खालातुकुम और तुम्हारी खालाएं, ये लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है, जैसे खालात खाला की जमा है। वह बनातुल अख, बनात बेटियां, अख भाई, भाई की बेटियां यानी जो है वो भतीजियां। वह बनातुल उख्ते और बहन की बेटियां, भांजियां शामिल है। वह उम्महातुकुमुल्लाती और वो तुम्हारी वो माएं, अल्लाती जिन्होंने अर्दा नाकुम जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है। अर्दा ये रजात का लफ्ज जो है, ये दूध पिलाने के मनों के अंदर, अर्दा यर्दान औरत का दूध पिलाना। व उम्महातुकुम निसाउकुम व उम्महातु निसाइकुम, ये लफ्ज कोई मिस हो गया यहाँ पे, अखवाह। व अखवातुकुम और तुम्हारी बहने, मिन अर्रिदा, रिजात से तुम्हारी बहने यानी दूध शरीक बहने जिनको कहा जाता है। वह महातो निसाइकुम और तुम्हारी औरतें यानी तुम्हारी औरतों, वह महातो निसाइ तुम्हारी औरतों की माए, यानी तुम्हारी औरतों की माए से मुराद है तुम्हारी बीवियों की माए, तो सास जो है, रिश्ते जो है। वह रबाइबुकुम, वह रबाइब और रबाइब तुम्हारी जेर तरबियत बेटियां, रबाइब जो है ये वो बेटी जो पिछली बीवी के पिछले शोहर से हो तो उसको रबीबा कहा जाता है, और रबीबा की जमा फिर रबाइब है, यानी वो बेटियां। अल्लाती फी हुजूरिकुम, वो बेटियां फी हुजूरिकुम जो तुम्हारी गोदों में हैं, जो तुम्हारे जेरे तरबियत हैं, इसी वजह से जेरे तरबियत, रबाइब उस बेटी को कहा जाएगा जो इन माँ के साथ रहती है और फिर उसका जो दूसरा शोहर है उसके साथ, उस शोहर की तरबियत में, उसकी गोद में जो बेटी है उसको भी फरमाया गया कि ये भी हराम है। हुजूर जो है हिजर की भी जमा है और हुजर की भी जमा है, जिसके मानी गोद होते हैं, तरबियत, जेर तरबियत जो है की तरफ इशारा है, जेर निगरानी। मिन निसाइकुम तुम्हारी औरतों में से, अल्लाती, अच्छा वो ये जो रबायब है वो कौन सी जो है वो किन औरतों से जो है, और मैं उन औरतों की तशरीह की, किन औरतों से ये बेटियां रबायब, अल्लाती वो औरतें, दखल तुम बेहन्ना जिनसे तुमने सोबत की हो, जिनसे तुमने जन शो का ताल्लुक इस्तेमाल किया हो। फ़इल्लम तकूनू, पस अगर ना ऐसा हो यानी अगर तुमने तुमने उनसे सोबत ना की हो, फला जुनाह अलैकुम, फला पस नहीं है जुनाह गुनाह अलैकुम तुम पर, तो फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं, फिर तुम यानी वो अगर तुमने सोबत नहीं की है तो फिर ऐसी बीवी की बेटी से, यानी अगर तुमने उस औरत को तलाक दे दिया तो ऐसी औरत की बेटी से फिर तुम निकाह कर सकते हो। वह हलाइला, और बीवी, ये भी हलाइला भी बीवी के मानों के अंदर आया है। अबनाअकुम, अबनाइकुम यानी तुम्हारे बेटों की जो है वो बीवी है, जो हलाइल बीवी, और ये हलाइल का लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है ये हलीला की जो है वो जमा है। वो औरत जो तुम्हारे लिए हलाल है, तो जाहिर है तुम्हारे लिए हलाल है, तुम्हारे मतलब तुम्हारे लिए वो औरत हलाल है जो तुम्हारी बीवी है। तो ये बीवी के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ हलाइला, हला इला की जमा हला, सॉरी हलीला की जमा हला इला है, हला इला। अब नाओ को तुम्हारी बीवियों की बेटियों, बीवी सॉरी तुम्हारी बेटों की बीवियों, जो बहू के जिसके जो जिसके लिए इस्तेमाल होता है। अल्लज़ीन मिन असलाबिकुम, वो मिन असलाबिकुम जो तुम्हारी सुलभ से हैं, यानी वो बेटे जो तुम्हारी सुलभ से हैं, तुम्हारी पीठों से हैं, तो वो उन बेटों की बीवियां जो हैं बहू है वो भी तुम पर हराम है। असलाब जो है ये सुलभ की जमा है, सुलभ रीढ़ की हड्डी को कहते हैं, पीठ को कहते हैं, जाहिर इससे मुराद जो है वो जो तुम्हारे हकीकी बेटे हैं, तुम्हारे जो नुतफे से हैं, और वो भी है वान तजमाऊ, और कि तुम जमा करो बैनल उख्तैन, दो बहनों को, उख्तैन उख्त जो की जो है वो जमा उख्तैन, दो बहनों को तुम जमा करो, इल्ला मा कद सलफ, बस सिवाय इसके कि जो इससे पहले अब हो चुका सो हो चुका, वही बात है। इन अल्लाह काना, बेशक अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला है गफूरन रहीमा, बहुत ज्यादा बख्शने वाला और बेइंतहा मेहरबान है। ये वो बात है, इसकी तर्जमा पढ़ दो।
तुम पर हराम की गई हैं तुम्हारी माएं, बेटियां, बहनें, फूफियां, खालाएं, भतीजियां, भांजियां, और तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें, और तुम्हारी बीवियों की माएं, और तुम्हारी बीवियों की लड़कियां जिन्होंने तुम्हारी गोदों में परवरिश पाई है, और बीवियों की लड़कियां जिनसे तुम्हारा ताल्लुक जन्नो शो हो चुका हो। वरना अगर सिर्फ निकाह हुआ हो, ताल्लुक जानो शो ना हुआ हो, तो इन्हें छोड़कर इनकी लड़कियों से निकाह कर लेने में तुम पर कोई मुआवजा नहीं है, और तुम्हारे उन बेटों की बीवियां जो तुम्हारी सलब से हो, और ये तुम पर हराम किया गया है कि एक निकाह में दो बहनों को जमा करो, मगर जो पहले हो गया सो हो गया, अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है।
जज़ाकुमुल्लाह। अब ये मुहर्रमात शरिया, ये लफ्ज है हमारा जो इसको जान ले, मुहर्रमात शरिया की तफसील बयान की गई कुरान के अंदर, ये वो मकाम है। और मेरे जीज भाई, ये कुरान की एक एक आयत के अंदर बेइंतहा हिकमतें पोशीदा है, लिहाजा हमको जानने की जरूरत है। आमतौर पर ये हमें पता होता है, मारूफ होता है हमारे यहाँ, वो हम वो रिश्ते नहीं करते जहाँ पे हराम रिश्ते हैं, लेकिन हमें जान लेना चाहिए कि इन हराम रिश्तों को हराम करार देने के अंदर क्या हिकमतें पोशीदा हैं। तो इनको जो है इनको जानने से हमारा कुरान के ऊपर ईमान और इस्लामी निजाम के ऊपर जो है हमारा यकीन जो है इससे इंशाअल्लाह मुस्तहकम होगा। अब बाप की मनकूहात के साथ ममानत जो की गई है पिछली आयत के अंदर निकाह की, कि अब उसमें जो है फिर कुछ मजीद चीजें उसके साथ वाबस्ता थी, अब उन चीजों का तذکرہ किया गया कि अगर बाप की जो मनकूहा है, जो बीवियां हैं उन वो रिश्ते जब हराम हुए हैं, तो फिर जो है दूसरे रिश्तों का जो है वो तफसील आ गई है। इस आयत में फिर वही हुरमतें बयान हुई है जो इंसानी फितरत के तकाजों पे मबनी है, यानी जहां पे रहम के रिश्ते जो है करीब मौजूद हों, जहां जहां पे भी, या फिर उनमें मुशाबहत पाई जाती हो, तो ये रहम के रिश्तों के अंदर जो है उनकी बुनियाद रहम होता है, मोहब्बत, राफत, शफकत के जो है जज्बात होते हैं उनके अंदर, फिर जो है नफसानी जो है वो शहवत और रगबत जो है उसकी अमेज़िज न होनी चाहिए। इस वजह से अल्लाह ताला ने वो रिश्ते, उन रिश्तों का तकद्दस और रिश्तों की मोहब्बत और रिश्तों की चाहत बरकरार रखने के लिए फिर अल्लाह ताला ने इनको शैफानी रगबतों से जो है उनके रिश्तों से और उन उन उन, उन ख्यालात और जज्बात से इनको पाक कर दिया है, कि ये वो रिश्ते हैं, ये वो हुरमत के रिश्ते हैं जिनके अंदर नफसानी ख्वाहिशात और कोई जो है दखल अमर और ताल्लुक नहीं होना चाहिए, और इनको इसलिए हराम कर दिया है कि कोई शख्स इस तरफ सोचे भी ना, इस तरफ कि जो है इन रिश्तों को जो है जो हुरमत है उसको जो है वो बिल्कुल पाकीजा रखा जाए। अब जिन औरतों से जो है निकाह करना हराम है उनकी चार किस्में हैं। अब वो मुहरमात, पहले जो है जो किस्म है वो मुहरमात नसब है, यानी जो रिश्ते रहम की कुर्बत के बायस हराम होते हैं वो रिश्ते, उनकी वो उनकी तादाद जो है सात है, और वो ये हमेशा के लिए हराम है, हर सूरत के अंदर हराम है। उनमें माएं हैं, माओं के अंदर सगी भी, सुतीली भी, माँ की माँ भी और बाप की माँ भी, ये सारे जो शामिल है। फिर बेटियां हैं, और बेटी के अंदर फिर बेटी, पोती, पड़पोती, नवासी, पड़नवासी, ये भी शामिल है। फिर बहनें हैं, फिर चाहे सगी बहने हों, अलाती बहने हों, यानी बाप शरीक या फिर माँ शरीक जिनको अख्याफी कहा जाता है वो बहने हों, सब शामिल है। खूफियाँ हैं बाप की हकीकी बहने हों या अलाती हों या ख्याफी हों। फिर खालाएं हैं वालदा की बहने, वो भी इसी तरह चाहे हकीकी हों चाहे अलाती हों चाहे अख्याफी हों, वो भी है। फिर भाई की बेटियां यानी भतीजियां हैं, चाहे हकीकी हों अलाती हों या ख्याफी हों। फिर बहन की बेटियां भांजियां हैं, वो भी उनके ऊपर इतलाक होता है चाहे हकीकी हों अलाती हूँ या ख्याफी हूँ। और दूसरी किस्म के जो है वो है वो मुहरमात रजात, जो दूध पिलाने से यानी वो रिश्ते जो दूध पिलाने से लाजिम हो जाते हैं, उन रिश्तों की भी इस्लाम के अंदर बड़ी अहमियत है और अरबों के अंदर तो बहुत ज्यादा बड़ी अहमियत है। और इसमें हमारी तारीख के अंदर ऐसा है कि बाज़ औक़ात किसी बदू ने और बड़े दूर दराज में दूर रहने वाले शख्स ने जो है वो जो दूध पिलाया है किसी रॉयल फैमिली में से किसी को यानी, और फिर वो शख्स जो है वो बादशाह बन गया, तो उस बादशाह ने उस बद्दू को और उस गरीब आदमी को भी ऐसी ही हकीकी जो है वो इज्जत और वो दी है जैसे हकीकी भाइयों को दी जाती है। तो इस तरीके से जो है ये इसकी बड़ी अहमियत है अरबों के अंदर भी और अहमद इस्लाम के अंदर भी, अगरचे बरसगीर पाक हिंद के अंदर इसका रिवाज जो है वो कम हुआ है, कम है, लेकिन बहरहाल रिजात की वजह से जो है वो रिश्ते बिल्कुल हकीकी रिश्तों की तरह है। इन फिर मुहरमात को इन रिश्तों की वजह से जो रिश्ते हुरमत के रिश्ते बनते उन रिश्तों को मुहरमात रजाइया कहा जाता है, इन दूध के रिश्ते, और वो भी हमेशा के लिए हराम है। इनमें फिर वो है वो माएं हैं जिन्होंने दूध पिलाया है, चाहे एक दफा पिलाया हो चाहे मुतअद्दिद मरतबा पिलाया, वो बहने हैं जो रजात के रिश्ते से जो है वो आती है। दूध पिलाने वाली औरत उसके बच्चे की माँ उस और उसका फिर शोहर, इस औरत की नस्बी औलाद और उसके बहन भाई, उस औरत की बहनें, उसकी खालाएं, उस औरत के जेठ देवर, उस बच्चों के फिर चचा बन जाते हैं, और औरतों की शोहर की जो बहनें हैं बच्चों की फिर फूफी बन जाती। गोया औरत दूध पिलाने वाली औरत के जितने रिश्ते हैं फिर उस दूध पीने वाले बच्चे के साथ वो जुड़ जाते हैं, वो सारे के सारे फिर इस तरीके से जो है हकीकी रिश्तों की तरह जुड़ जाते हैं इन निकाह के जुमरे के अंदर। और नस्ब के रिश्ते से जो निकाह आपस में हराम है, रजात के रिश्ते से भी वो निकाह जो है इसी तरह हराम है, इस बात को जान लेना चाहिए। और तीसरी किस्म के जो जो रिश्ते हराम है उन्हें हुरमत मसाहरत कहते हैं। मसाहरत का मतलब वो होता है इन लाज जो है जो इन लाज से जो ताल्लुक बन जो जो रिश्ते बनते, वो औरतें जो बीवी से ताल्लुक की वजह से हराम हुई हैं, इन लाज जो 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 रिलेशन हैं ये वो मुहरमात हैं, उन्हें मुहरमात बिल मुसाहरा कहा जाता है। वो ये भी हमेशा के लिए हराम है। उनमें मतलब बीवियों की माएँ हैं और इसमें दादी और नानी भी शामिल है, चाहे नस्बी हूँ चाहे रजाई हूँ। फिर रबायब है बीवी की पिछले शोर से जो बेटियां हैं और ये जो है वो भी उसके अंदर शामिल है, और इस रिश्ते के अंदर फिर पोती और नवासी भी जो है वो शामिल हो जाती है। फिर बेटियों की बीवियां बेटों की बीवियां हैं, बेटे के मुंह में फिर पोता भी शामिल है नवासा भी शामिल है, उनकी बीवियां भी अपने दादा और नाना पर इसी तरह हराम होंगी। फिर ये भी फरमाया कि दो बहनों को भी एक निकाह में जमा नहीं किया जाता, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दो बहनों को एक निकाह में जो है वो निकाह जमा करना हराम है। और ये जो है हाँ अगर एक बीवी जो है वो फोत हो गई है तो फिर उसी बीवी की बहन से रिश्ता जो है वो मुमकिन है। तो इसी हुक्म में फिर खाला और भांजी फूफी और भतीजी को जमा करना भी शामिल है, ये भी दो बहनों के लिए जुमरे के अंदर है। और ये सारे जो इजाफी रिश्ते ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और हदीस मुबारक और सुन्नत मुबारक से ये रिश्ते जो है वो साबित आते हैं। अच्छा, यहाँ बहन के लफ्ज में बिल्कुल अमूम है और उसका इतलाक भी इसी तरह अख्याफी बहन, हकीकी बहन, अलियाती बहन सब पर जो है वो होता है। और जिस तरह नस्ली और नस्वी बहनों पर इसका इतलाक होता है, इसी तरह रजाई बहनों के ऊपर भी उस बहन का इतलाक होता है। और चौथे मुहरमात जो है वो मशरूत मुहरमात है, वो दायमी मुहरमात नहीं है, यानी वो इसका मतलब है कि वो कभी कभी जो है वो हलाल भी हो सकते हैं। मसलन अगर कोई औरत किसी दूसरे के निकाह में है तो वो दूसरे से निकाह में होने की वजह से वो हराम है, वो हराम रिश्ता है किसी शख्स के लिए कि वो निकाह में होते हुए किसी कोई और निकाह करे, तो लेकिन जब वो निकाह खत्म हो जाएगा तो फिर वो हुरमत भी खत्म हो जाएगी। और इस तरीके से तो इस मुहरमत निकाह की जो है तफसील है जो तीन जो है वो किस्में हैं और चौथी का तो जो है वो आरजी है, तो मैंने इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि उनको एनलिस्ट कर दिया गया है ताकि जो है वो भी आपके सामने जो वो आ जाए इस तरीके से। तो ये इस तरीके से इन मुहरमात की जो है वो तफसील भी यहाँ पे आ गई है। इजाफी मवाद के अंदर आप कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको बयान करने की जरूरत है, लेकिन यकीनी तौर पर आपको पता है कि हम मजीद जो है جہاں پہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. مثلاً بیوی کے لیے کچھ الفاظ جہاں پہ استعمال ہوئے ہیں, تو بیوی کے لیے جتنے بھی قرآن میں لفظ استعمال ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کی تفصیل یہاں پہ ہم بتائیں گے ان میں جو کیا فرق ہے. پھر گناہ کے لیے جو بہت سارے اس میں اب یہاں بھی جو ہے وہ جناح کا لفظ بھی آیا ہے اور اثم کا لفظ بھی آیا ہے, تو گناہ کے لیے جو مختلف الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں ان کی تفصیل بھی جو ہے یہاں پہ انشاءاللہ بتائیں گے. اور پھر ایک اور بھی یہ جو بات اس سے پہلے آئی ہے کہ جنسی تعلقات کے لیے اور تعلقات مرد مرد و عورت کے جو تعلقات زن و شو ہیں ان کے لیے اور اس کی تعلیم کے لیے قرآن میں جو لفظ مستعمل ہوئی ہے وہ بالکل واضح کلیئر صاف طور پہ یعنی بالکل ڈائریکٹ الفاظ نہیں ہیں, صریح نہیں ہیں بالکل, اور ان کی حکمت ہے اس میں. اور وہ جو ہے 8 قسم کے الفاظ ہیں اور وہ سارے کنایتاً جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, اور یہ اس میں لفظ کی جو شرم و حیا کے جو تقاضے ہیں اور جو ضرورت ہے اس کو واضح کرتے ہیں, وہ الفاظ کو بھی اور اس حکمت کو بھی انشاءاللہ اس کے اندر جو یہاں پہ بیان کریں گے. ہماری بہنیں بھی اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں, بیٹیاں بھی شریک ہوتی ہیں, لیکن جان لینا چاہیے کہ ان کو اسی وجہ سے ہم کنایتاً جو الفاظ کو بیان کرتے ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ہماری بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, ماؤں کے لیے, ہمارے لیے, باپوں کے لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہیں. اپنے بیٹوں کو, اپنے بچیوں کو یہ تعلیم دینا بہت ضروری ہے کہ یہ جو حرام رشتے ہوتے ہیں ان کی کیا جو اہمیت ہے, اور یہ بتانا بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے ایک خاص حد تک ان کی تعلیم ناگزیر ہے, لازم ہے, فرض ہے کہ ہم وہ ان رشتوں کو جانیں اور ان کو پہچانیں اور ان کی آگے پہچان کرائیں, اور جہاں جہاں پہ ان حرمات کا کہیں پہ وائلیشن ہو تو بالکل اس میں ہر شخص کو پتا ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں اس کی حساسیت جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے. بالکل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.